एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
पवित्र प्रभु मैं अपवित्र हूँ, तू है पवित्र प्रभु मैं अपवित्र हूँ, तेरे लहू की सामर्थ से
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोतागण, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे लोग तेरे पास आते हैं, हम सबों को आशीष दे, हमें तेरा वचन के द्वारा आशीष कर, हमें तेरा पवित्र आत्मा से अगुवाई कर, विशेषकर मेरे संगो पिता मुझे तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे वचन को सुनाने के लिए मदद और अगुवाई कर, और हरेक सुनने वालों को तो आशीष दे। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण कर, आमीन। आज हम सीखेंगे दोषी पापी से क्षमा प्राप्त संत तक। वहाँ कोई उंगलियों के निशान नहीं थे, कोई हथियार कभी नहीं मिला था, किसी ने भी हथियारे को डॉक्टर के कार्यालय में प्रवेश करते नहीं देखा, किसी ने भी गोली की आवाज़ को नहीं सुना, लेकिन डॉक्टर को उसकी मेज के पीछे मरा हुआ पाया गया था। 5 गोलियां उसकी कमीज को छेद गई थी। यह पूर्ण अपराध लग रहा था। पहले पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन फिर उन्होंने डॉक्टर के डेस्क पर एक पेंसिल होल्डर से जुड़ा एक छोटा सा तार देखा। तार डेस्क के दराज में एक टेप रिकॉर्डर की तरफ से गया हुआ था। पेंसिल होल्डर में उन्होंने महसूस किया वास्तव में एक माइक्रोफोन छुपाया गया था, जिससे चिकित्सक उन रोगियों के साथ अपनी बातचीत रिकॉर्ड करता था जो उससे परामर्श ले रहे थे। जांचकर्ताओं ने जल्दी से टेप को फिर से पीछे घुमाया और उनके आश्चर्य के लिए वास्तविक अपराध की एक पुनरावृत्ति को सुनना शुरू कर दिया। एंथनी नाम का एक आदमी कार्यालय में प्रवेश कर चुका था और डॉक्टर के साथ गर्मा गर्म बहस शुरू कर दी थी। गोलियों की आवाज़ आई, टेप डॉक्टर कालिन पर मर रहे व्यक्ति के भयानक विलाप के साथ समाप्त हुआ। हर भयानक विवरण दर्ज हो गया था। हत्यारे ने सोचा कि उसका अपराध हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहेगा। वह कोई सुराग ना छोड़ने के लिए बहुत सावधान था, लेकिन टेप ने पूरी कहानी सुनाई। आज हम परमेश्वर के अंतिम फैसले के बारे में जानने जा रहे हैं, जब मनुष्यों का किताबों में दर्ज किए गए कार्यों के अनुसार न्याय किया जाता है। प्रकाशित वाक्य 20:12। यह उन लोगों के लिए जिन्होंने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है बुरी खबर होगी, लेकिन निर्णय उन लोगों के लिए आश्चर्यजनक रूप से अच्छी खबर है जिन्होंने मसीह में सुरक्षा पाई है। आप कैसे बिना डरे न्याय का सामना कर सकते हैं? दुनिया का न्याय कौन करेगा? आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 5:22। यहाँ लिखा है, पिता किसी का न्याय नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने सभी न्याय को पुत्र को सौंप दिया है। सूली ने मसीह को हमारा न्यायाधीश बनने के लिए कैसे तैयार किया, क्या आप जानते हैं? आइए हम पढ़ते हैं रोमियो 3:25-26। यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें यीशु को प्रायश्चित के बलिदान के रूप में अपने लहू में विश्वास के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने ऐसा अपना न्याय प्रदर्शित करने के लिए किया, ताकि आप न्याय संगत बने और ऐसे व्यक्ति बने जो यीशु में आस्था रखने वालों को न्याय संगत सिद्ध करें। हमारे विकल्प के रूप में मसीह की मृत्यु उन्हें एक न्यायाधीश और एक दयालु न्यायकर्ता दोनों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाती है, जो पश्चाताप करने वाले पापी को माफ कर सकती है। जब देख रहे ब्राह्मण ने सवाल पूछा, एक निष्पक्ष न्यायाधीश कैसे दोषी व्यक्ति को दोषमुक्त घोषित कर सकता है? मसीह अपने हाथों में निशानों को इंगित करके जवाब दे सकते हैं। उन्हें अपने शरीर में सिर्फ हमारे पापों के लिए दंड मिला है। स्वर्ग की किताबें प्रत्येक व्यक्तिगत जीवन का अभिलेख सुरक्षित रखती हैं, और इन अभिलेखों का उपयोग निर्णय में किया जाता है। प्रकाशित वाक्य 20:12। उन लोगों के लिए यह बुरी खबर है जो अपने गुप्त पापों और अपराधों की कल्पना करते हैं, जो कभी भी उन्हें परेशान नहीं करेंगे, लेकिन उन सभी के लिए आश्चर्यजनक अच्छी खबर है जिन्होंने ईमानदारी से मसीह को स्वर्ग में अपने वकील के रूप में स्वीकार किया है। यीशु का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1:7। पाप के हमारे जीवन के बदले में यीशु क्या पेशकश करता है? आइए हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5:21। यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें मसीह बनाया जिसके पास ऐसा कोई पाप नहीं था जो हमारे लिए भी पाप हो, ताकि हम उनके भीतर परमेश्वर का सदाचार बन सके। परमेश्वर यीशु को हमारे बदले में पाप के जगह रखा। मसीह के पूर्ण धार्मिकता के जीवन के लिए पाप का हमारे जीवन में आदान प्रदान किया जाता है। यीशु के पापहीन जीवन और मृत्यु के कारण परमेश्वर हमें क्षमा कर सकते हैं और हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जैसे कि हमने कभी पाप नहीं किया। यीशु ने हमारे वकील और न्यायाधीश होने के लिए क्या योग्यता प्राप्त की है, आइए हम इसे सीखते हैं। मसीह समय पर आए थे। अपने बपतिस्मा पर यीशु का पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक किया गया था। हम पढ़ते हैं मत्ती 3:16-17 में, जैसे ही यीशु ने बपतिस्मा लिया और पानी से बाहर चले गए, उस समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने देखा कि परमेश्वर की आत्मा कबूतर की तरह उतर रही है और उन पर प्रकाश डाल रही है, और स्वर्ग से एक आवाज ने कहा, यह मेरा पुत्र है जिसे मैं प्यार करता हूँ, इनसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उनके बपतिस्मे पर पवित्र आत्मा द्वारा मसीह के अभिषेक के बाद शिष्यों ने घोषणा की, यह हम यूहन्ना 1:41 में पाते हैं, हमें मसीहा मिल गए हैं, मसीह मिल गए हैं। शिष्यों को पता था कि मसीहा और यूनानी शब्द क्राइस्ट दोनों का अर्थ है अभिषिक्त जन। इब्रानी शब्द मसीहा और यूनानी शब्द क्राइस्ट दोनों का अर्थ था अभिषिक्त जन। यीशु के एक शिष्य लुका ने तिबेरियस सीजर के 15वें वर्ष को मसीहा के रूप में यीशु के अभिषेक की तारीख दर्ज की है, जो हम लुका 3:1 में पाते हैं। हमारे लिए यह वर्ष 2027 होगी। यीशु के आने से 500 साल पहले भविष्यवक्ता दानियल ने अपने किताब दानियल 9 में भविष्यवाणी की थी कि यीशु को 2027 में मसीहा के रूप में अभिषेक किया जाएगा। यह हम पढ़ते हैं दानियल 9 का 25 में। यहाँ लिखा है, यरूशलेम के पुनर्निर्मित करने और पुनर्निर्माण की आज्ञा के निकालने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। सप्ताह इब्रानी और 62 सप्ताह होंगे। दानियल 9:25। 7 सप्ताह और 62 सप्ताहों में कुल 69 सप्ताहों या 483 दिन होते हैं। प्रतीकात्मक बाइबल भविष्यवाणी में प्रत्येक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। यह हम यजकेल 4:6 और गिनती 14:34 में पढ़ते हैं। इसलिए 69 सप्ताहों का 483 दिन 483 साल के बराबर होते हैं। दानियल ने भविष्यवाणी की कि यरूशलेम को बहाल करने और पुनर्निर्माण के लिए एक आदेश जारी होगा और इस आदेश के ठीक 483 साल बाद मसीहा दिखाई देंगे। क्या यीशु नियत समय पर मसीहा के रूप में प्रकट हुए थे? अर्थशास्त्र ने 457 ईसा पूर्व में यरूशलेम के पुनर्निर्माण के लिए आदेश जारी किया। यह हम एजरा 7:7-26 में पाते हैं। 483 साल बाद 2027 में समाप्त हो गया। 457 ईसा पूर्व और 27 ईस्वी 484 होते हैं। डिग्री वर्ष 457 के दौरान आगे बढ़ी और मसीहा को 27 अप्रैल के दौरान अभिषेक किया गया, जिससे उन्हें दोनों आंशिक वर्षों बना दिया गया। इसलिए सही वर्ष सही समय 483 वर्षों का होगा। नियुक्त समय पर 2027 में यीशु संदेश के साथ प्रकट हुए। समय आ गया है, यह हम पढ़ते हैं मरकुस 1:15 में। इस बाइबल की भविष्यवाणी की सटीक पूर्ति प्रभावशाली पुष्टि है कि नाजरत के यीशु ही वास्तव में मसीह हैं, मानव शरीर में परमेश्वर हैं। यीशु को वादा कितने समय में पूरा करना था? आइए हम पढ़ते हैं दानियल 9:27 का पहला भाग। वह एक सप्ताह के लिए कई लोगों के साथ एक प्रण या एक वचन करेंगे। जब हम साल के सिद्धांत को लागू करते हैं तो यह सप्ताह 7 साल का होगा। इसलिए 7 साल 2027 से 2034 तक यीशु वादे या एक प्रण की पुष्टि करेंगे जो उन्होंने पाप करने के तुरंत बाद आदम और हवा से किया था। परमेश्वर ने एक प्रण एक वादा किया कि वह किसी की मृत्यु के माध्यम के द्वारा पाप से मानव जाति को बचाएंगे, जिसे वह हमारे पापों के लिए मरने के लिए भेज देंगे। उत्पत्ति 3:15। इस 17वें सप्ताह के मध्य में क्या होना था? आइए हम पढ़ते हैं दानियल 9:27 का आखिरी भाग। 7 सप्ताह के बीच में वह बलिदान और भेंट का अंत करेंगे। दानियल 9:27। यीशु को 2031 में सप्ताह के मध्य में सूली पर चढ़ाया गया था। मसीह की मृत्यु के पल में परमेश्वर ने मंदिर के पर्दे को 2 भाग में ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया। मत्ती 27:51। बलि की भेंट जिसे मारा जाना था यीशु का प्रतीक परमेश्वर का प्रिय याजक के हाथों से बच निकले। यह एक संकेत था कि परमेश्वर अब मानवता के लिए जानवरों का बलिदान चढ़ाया जाना नहीं चाहते थे। भविष्यवाणी के पत्र में पूरा करने के बाद यीशु ने आगे बलि चढ़ाने की किसी भी आवश्यकता को समाप्त कर दिया। मसीह की मृत्यु के बाद से लोग पशु बलि और मानव याजक के माध्यम से नहीं, बल्कि मसीह के माध्यम से परमेश्वर के प्रिय और हमारे महायाजक के माध्यम से परमेश्वर तक पहुंच प्राप्त करते हैं। क्षमा किए गए पापों का आश्वासन। दानियल के भविष्यवाणी के अनुसार यीशु क्यों मरे, यह हम पढ़ते हैं दानियल 9:26 में। अभिषेक व्यक्ति काट दिया जाएगा, लेकिन खुद के लिए नहीं। सूली पर मृत्यु पर यीशु काटे गए थे, वह मर गए, लेकिन खुद के लिए नहीं। अपने पाप के लिए जुर्माना नहीं भरा, बल्कि पूरी दुनिया के पापों के लिए दंड का भुगतान किया। हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे सभी पापों को क्षमा कर दिया है? आइए हम पढ़ते हैं रोमियो 3:22-25 में। यहाँ लिखा है, परमेश्वर से धार्मिकता यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से आती है। जो विश्वास करते हैं, सबने पाप किया है और मसीह यीशु द्वारा उद्धार की मुक्ति के माध्यम से उसकी कृपा से स्वतंत्र रूप से न्याय संगत है उनके लहू में विश्वास के माध्यम से, रोमियो 3:22-25। इन पदों में मुख्य बिंदु हैं, हम सभी ने पाप किया है लेकिन परमेश्वर की कृपा के कारण सभी न्याय संगत हैं जिनको मसीह के रक्त की शुद्ध शक्ति में विश्वास है। जब हम न्याय संगत होते हैं तो परमेश्वर हमें हमारे पिछले पापों के अपराधों को दूर करने के लिए दोषी नहीं घोषित करते हैं और परमेश्वर हमें धर्मी घोषित करते हैं। परमेश्वर से सदाचार यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से आता है। हम सभी जो काफ़ी अच्छे होने के लिए संघर्ष करते हैं, अपने आप को मापने के लिए मसीह की कृपा पूर्वक स्वीकृति में वास्तव विश्राम पा सकते हैं। वह प्रतिज्ञा करते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मत्ती 11:28। हम सभी जो अतीत के धब्बों और अपर्याप्तता और श्रम की भावनाओं से पीड़ित हैं, मसीह में शांति और पूर्णता पा सकते हैं। न्याय की शुरुआत होने का समय। दानियल के 8वें अध्याय में एक स्वर्गदूत ने भविष्यवक्ता को भविष्य का एक बड़ा प्रतिदृश्य दिखाया। आइए हम पढ़ते हैं दानियल 8:13-14। यहाँ लिखा है, दृष्टांत को पूरा होने में कितना समय लगेगा? दैनिक बलिदान से संबंधित दृष्टांत। उसने मुझसे कहा, इसमें 2300 शाम और सुबह या दिन इब्रानी शब्द के अनुसार लगेंगे, तब वेदी को पुनः शुद्ध किया जाएगा, शुद्धिकृत, या 2300 शाम और सुबह या 2300 दिन लगेंगे। स्वर्गदूत ने दानियल से कहा। दानियल स्वर्गदूत द्वारा भविष्यवाणी के 2300 दिन के भाग की व्याख्या करने से पहले बेशुद्ध हो गया और 8वां अध्याय इसकी व्याख्या के बिना बंद हो गया। लेकिन बाद में स्वर्गदूत फिर से प्रकट हुआ और कहा, दृष्टांत को समझे, 70 सप्ताह आपके लोगों और आपके पवित्र शहर के लिए अपराध समाप्त करने, पाप को खत्म करने, दुष्टता के लिए प्रायश्चित करने के लिए अलग करने का आदेश दिया गया है, दानियल 9:22-24। 2300 दिन वास्तव में 2300 साल प्रत्येक दिन एक वर्ष का होता है। एजेकियल 4:6 के अनुसार 70 सप्ताह या 490 साल 2300 वर्षों की लंबी अवधि के पहले सेक्शन का निर्माण किया गया। 457 ईसा पूर्व में दोनों समयों की अवधि शुरू हुई जब फारस ने यरूशलेम को बहाल करने और पुनर्निर्माण के लिए आदेश जारी किया। 2300 वर्षों से 490 साल घटाने के बाद 1810 शेष बचता है। 1810 साल ईस्वी 34 में जोड़ना, जब 490 साल समाप्त हो गए, हमें ईस्वी 1844 में लाते हैं। स्वर्गीय वेदी का शुद्धिकरण एक निर्णय। स्वर्गदूत ने दानियल से कहा कि 1844 में 2300 वर्षों के अंत में शरण स्थान को शुद्ध किया जाएगा, दानियल 8:14। लेकिन इसका क्या मतलब है? ईस्वी 70 के बाद से जब रोमियों ने यरूशलेम में मंदिर को नष्ट कर दिया तो परमेश्वर के लोगों के पास धरती पर कोई मंदिर नहीं था, इसलिए शरण स्थल को शुद्ध करने के लिए 1844 में शुरू हुआ अकाशीय शरण स्थल होना चाहिए था, जो कि पृथ्वी के मंदिर का प्रतिकृति था। अब स्वर्गीय पवित्र स्थान की शुद्धि का मतलब क्या है? प्राचीन इज़राइल में प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया जाता था लोगों को पापों के शुद्धिकरण के लिए, और वर्ष में एक बार मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता था। फिर प्रत्येक वर्ष प्रायश्चित के दिन शरण स्थल को पिछले वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए सभी पापों से शुद्ध किया जाता था। यह हम लेविवस्था का 16वां अध्याय में पाते हैं। महायाजक ने वर्ष में एक बार प्रतीकात्मक रूप से जो किया, यीशु हमारे महायाजक के रूप में हमेशा के लिए कर दिया, इब्रानियों 9:6-12। निर्णय में अपने जीवन के लेखे जोखे का सामना करना। 1844 से मसीह न्यायाधीश के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अभिलेख की जांच कर रहे हैं, जो अभी हमेशा यह पुष्टि करने के लिए जीवित हैं कि यीशु के आने पर बचाए जाने वाले लोगों में से कौन होगा। हमारे न्यायाधीश के रूप में यीशु स्वर्ग में हमारे जीवन के अभिलेख से धर्मियों के सभी पापों को मिटा देते हैं। प्रेरितों के काम 3:19। अगर आपने मसीह को अपने विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो जब आपका नाम निर्णय में आता है तो आपको जीवन अभिलेख का सामना करना आसान होगा, और जब धर्मियों का न्याय समाप्त हो जाता है तो यीशु उन्हें इनाम देने के लिए पृथ्वी पर लौटता है। प्रकाशित वाक्य 22:12-14। क्या आप यीशु के आने के लिए तैयार हैं, या ऐसा क्या है जो आप उनसे छिपा रहे हैं? क्या आपके वादा करने वाले व्यक्ति के साथ खुले और ईमानदार संबंध हैं? हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 1:9। इसमें लिखा है, अगर हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह धर्मी और विश्वास योग्य हैं और हमारे पापों को क्षमा करेंगे और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करेंगे। 1 यूहन्ना 1:9। क्या आपने यीशु को अपना वकील मान लिया है, अपने पापों को स्वीकार किए हैं और यीशु के पास उससे क्षमा मांगे हैं? यीशु आपको क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार हैं, वो आपको क्षमा करेंगे। यीशु आपको आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान पवित्र परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए कि वह हमारे पापों के बदले में दुख सहा और हम उसमें विश्वास करके अपने पापों से आज़ाद हो सकते हैं और मुक्ति पा सकते हैं, अनंत जीवन पा सकते हैं। मेरे हरेक श्रोतागणों को तो आशीष दे इस वचन के द्वारा। विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiresamc@sudaven.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।